बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं। जी हाँ, हमारा यही उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सत्य को पहचाने और इस संसार के सृष्टिकर्ता तथा उसके द्वारा किए गए महान कार्य एवं उसके प्रेम को समझें। श्रोताओं, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से संत पौलुस द्वारा लिखी गई कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो लीजिए, इससे पूर्व कि आप अपना ध्यान आज के बाइबल अध्ययन की ओर केंद्रित करें, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले। बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, अच्छा नहीं है देख संभल जा यीशु से है जुदाई, यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल हूं और आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके आनंदित हैं और हमेशा की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए अपने मित्रों के साथ तैयार बैठे हैं। प्रियो, मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि आज हम पहले कुरिन्थियों के पत्र उसके 5 अध्याय से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। आज का विषय है कुरिन्थ की कलीसिया में ठोकर के कारण। जी हाँ, कुरिन्थ की कलीसिया में ठोकर के कारण, और ये कारण है अनैतिकता। तो आइए हम पहले कुरिन्थियों के पत्र 5 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ें। यहाँ तक कि सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। मेरे मित्रों, कलीसिया में यह पाप पाया जाता है। यह अफवाह नहीं है, या अफवाह नहीं थी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह सच और तथ्य आधारित समाचार है। यह अफवाह नहीं थी कि चर्चा का विषय हो। प्रियो, यह सर्वाधिक बात थी। लिखा है, ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। यह उस पुरुष की घृणित कहानी है जो अपनी सौतेली माँ को रखेल बनाए हुए था। हम पहला कुरिन्थियों के पत्र 5 अध्याय उसके 2 पद में पढ़ते हैं, और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। प्रियो, ध्यान दीजिए, प्रेरित यहाँ कठोर भाषा का उपयोग करता है, क्योंकि वह एक घोर पाप की चर्चा कर रहा है जिससे कुरिन्थ की कलीसिया ने समझौता किया हुआ था। हमें यह बोध होना आवश्यक है कि कलीसिया में घोर पाप का निवारण आवश्यक है। मती रचि सुसमाचार अध्याय 18 उसके 15-17 पद में प्रभु यीशु मसीह ने विस्तृत निर्देश दिया है। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया है। यदि वह न सुने तो एक या दो जन को अपने साथ ले जा कि हर एक बात दो या तीन गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला जैसा जाने। मेरे मित्रों, कुरिन्थ की कलीसिया इस निर्देश का पालन नहीं करती थी। यह बुराई से समझौता करने वाली बात थी। श्री जॉन मॉली ने कहा कि समझौता अंग्रेजी भाषा का सर्वाधिक अनैतिक शब्द है। मेरे विचार में मैं इसे सहमत हूँ। कुरिन्थ की कलीसिया इस बुराई से समझौता करके समझौते के स्वभाव का प्रदर्शन कर रही थी। प्रियो, हमें इस विषय में कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना है और इस अनैतिकता के लिए गवाही की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह प्रत्यक्ष प्रमाण था। यह न तो अफवाह थी और न ही कोई झूठी शिक्षा थी। यदि यह केवल व्यर्थ की बात होती तो पौलुस इस बात पर ध्यान नहीं देता और न ही कभी इसे लिखता। मेरे मित्रों, हम यह भी देखते हैं कि यह पाप संदिग्ध चर्चा का विषय नहीं था। यह एक घोर अपराध था जिसे बाहरी संसार भी पाप मानता था और यह निकट संबंधी के साथ शारीरिक संबंध था। यह उस संदिग्ध विषयों के विपरीत है जिन्हें सार्वजनिक न बनाते हुए कलीसिया में भी निर्णय ले लेना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक कलीसिया में एक महिला ने मन फिराया। उसने विश्वास में आने के लिए 3 महीने बाद अपने पास्टर को बुलाया और कहा कि वह बहुत परेशान थी। उसने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ और अत्यधिक निराश भी हूँ। मैं बहुत अधिक धूम्रपान करती हूँ। मैं धूम्रपान से मुक्ति पाने का प्रयास कर रही हूँ। 3 महीने के प्रयास के उपरांत भी मैं असफल रही हूँ। अब मैं उस स्थान पर आ गई हूँ जहाँ मैं धूम्रपान से तो घृणा करती ही हूँ, मैं अपने आप से भी घृणा करने लगी हूँ, क्योंकि मैं धूम्रपान छोड़ नहीं पा रही हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? पादरी साहब ने उसे अनेक परामर्श दिए। उसने कहा, देखो, यह एक संदिग्ध पाप है जिससे आप घृणा करती हैं और उसे त्यागना चाहती हैं। मैं आपको दोष नहीं देता, यह आपकी गवाही का विषय है। सबसे पहले तो आप प्रार्थना करना न छोड़ें। अपने मित्रों एवं सहेलियों से भी प्रार्थना करने का निवेदन करें, जैसा आप कह चुकी हैं कि वे भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं जानता हूं कि परमेश्वर आपको विजय प्रदान करेगा, क्योंकि यह आपकी मनोकामना है। अब दूसरी बात यह है कि आप निराश ना हो। तीसरी बात यह कि कलीसिया के पवित्र जनों में कृपया इसकी चर्चा ना करें, क्योंकि यदि आप उनसे कहेंगे तो वे आपकी खाल उधेड़ लेंगे, क्योंकि वे इसे संसार का सबसे बड़ा पाप समझते हैं। लगभग 3 महीने बाद एक दिन पादरी साहब ने उसे आराधना में आते हुए देखा और उसका चेहरा देखकर वह कह सकता था कि कुछ असामान्य घटना घटी है। आराधना के बाद वह पादरी साहब से बातें करने लगी और कही, आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा समाचार है। जिस दिन मैंने आपसे बात की थी उस दिन से आज तक मैंने धूम्रपान नहीं किया है। परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिलाया है। मेरे मित्रों, धूम्रपान को मैं संदिग्ध पाप की श्रेणी में रखता हूँ। यह न तो परमेश्वर के वचन में है और न ही इसमें अनैतिकता की कोई बात है। अतः इसके साथ भिन्न व्यवहार किया जाना चाहिए। इसे कलीसिया में न्याय के लिए नहीं लाना चाहिए और इसके विपरीत कुरिन्थ की कलीसिया की अनैतिकता परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन था। जी हाँ, अतः उसमें कलीसियाई अनुशासन की आवश्यकता थी, क्योंकि इसमें शंका की कोई भी स्थान नहीं थी कि वह पाप है या नहीं। वह विवाद का विषय ही नहीं था, वह तो ऐसा पाप था कि अन्य जातियां भी ऐसा नहीं करती थी। मेरे प्रियो, मैं अपने वर्तमान पीढ़ी से कुछ कहना चाहता हूँ। विवाह के बिना साथ रहना परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। जनता की राय क्या है या कितने लोग ऐसा कर रहे हैं, उसकी मान्यता नहीं है। परमेश्वर का वचन इसे पाप कहता है और वह पाप है और इसका अन्य कोई पक्ष नहीं है। जहाँ तक परमेश्वर के वचन की बात है, यह विवादास्पद पाप नहीं है। कुरिन्थ की कलीसिया को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी कि वह पापमय जीवन निर्वाह कर रहा था। कलीसिया अर्थात उनकी भूल यही थी कि वे उसे अनदेखा कर रहे थे। वे शांत रहकर उस पाप को उचित ठहरा रहे थे। उन्होंने उस पाप से समझौता किया था। यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। मित्रों, आप इसे एक कहावत स्वरूप स्मरण रखें, शुद्ध कलिसिया सामर्थी कलिसिया होती है, एक अशुद्ध कलिसिया लकवे की मारी होती है। आप अपने चारों ओर कलिसियाओं को देखें और इस कहावत की सत्यता को आप मापें या आंकें। आइए हम पहला कुरिन्थियों के पत्री 5 अध्याय उसके 3-5 पद को पढ़ें। लिखा है, मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानव उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूं कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। मेरे मित्रों, पौलुस उनसे कहता है कि वे एक साथ बैठकर निर्णय लें, और यदि वह व्यक्ति पाप से मन न फिराए तो वे उसे शैतान को सौंप दें। यह एक अति उत्तम बात है। क्या वह यही चाहता है? यदि उसने कहा है तो वह यही चाहता है। मेरे मित्रों, यह परमेश्वर की वचन की शिक्षा है। क्या आपको स्मरण है कि अय्यूब को भी शैतान को सौंप दिया गया था? शैतान परमेश्वर के पास आकर शिकायत कर रहा था कि वह अय्यूब के शरीर को स्पर्श की अनुमति दे या उसे अनुमति नहीं दे रहा है, इसलिए वह तो बहुत फल फूल रहा है। और सच तो है कि उसने परमेश्वर से कहा, तू मुझसे कहता है कि अय्यूब का ऐसा खरा व्यक्ति है, मुझे उसके स्पर्श की अनुमति तो दे, तब मैं तुझे बताऊंगा कि वह तेरा कितना निष्ठावान है, वह तुझे मुंह पर कोसेगा। अतः परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दे दी कि वह अय्यूब की परीक्षा ले, परंतु उसकी जान न ले। इसमें हमारे लिए सांत्वना है। शैतान परमेश्वर की संतान को तब तक नहीं छू सकता है जब तक कि उसे परमेश्वर अनुमति न दे, और जब परमेश्वर अनुमति देता है तब उसमें उसका उद्देश्य निहित होता है। मेरे मित्रों, आपको यह भी स्मरण होगा कि प्रभु यीशु ने पतरस से कहा था कि शैतान उसे गेहूं की नाई परख कर देखना चाहता है। पतरस शैतान को सौंप दिया गया था, और उस रात उसने प्रभु का इनकार किया। उसका इनकार करना यहूदा के अपराध के तुल्य जघन्य अपराध था। मेरे प्रियो, पतरस को स्वयं से घृणा होने लगी। उसे अपने इस कायरतापूर्ण कार्य से ही घृणा होने लगी। उसने सीख लिया कि वह कैसा दुर्बल व्यक्ति है। प्रभु ने उसके इस अनुभव द्वारा उसे एक ऐसा व्यक्ति बनाया जो पेंतिकोस्त के दिन निर्भीक होकर के प्रचार किया। ये वही पतरस था। हम पहला तीमुथियुस के पत्र 1 अध्याय उसके 20 पद में देखते हैं, जहां पर पौलुस लिखता है, उन्हीं में से हुमिनयुस और सिकंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें। ये दो पुरुष विश्वासी थे, परंतु वे ईश निंदा करते थे। पौलुस कहता है कि उसने उन्हें शैतान को सौंप दिया है। मेरे प्रियो, अब मैं समझ रहा हूं कि हमारी भावनाओं और मनोवेग का इसमें सम्मिलित होने का संकट है, अतः रूढ़िवाद का भी खतरा है। परंतु आज हमारी कलीसियाओं में ऐसे स्त्री और पुरुष हैं जो मसीह के काम को हानि पहुंचाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे स्त्री पुरुषों को हमें शैतान को सौंप देना चाहिए कि उन्हें शिक्षा मिले और वे आगे से मसीह के देह को हानि ना पहुंचाएं। मेरे प्रियो, मैं कुछ लोगों के बारे में परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उन्हें शैतान को सौंप दे, कि वह उन्हें अच्छा सबक सिखाए। यदि वे सच्चे विश्वासी हैं तो इसके द्वारा वे लौटकर प्रभु के पास आ जाएंगे, या फिर उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी कि वे सच्चे विश्वासी हैं या नहीं। यदि वे विश्वासी हैं तो वे स्वच्छ उभर आएंगे, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के लिए बेदाग प्रकट होंगे। मेरे विचार में हमें ऐसी प्रार्थना करने का अधिकार है। प्रियो, यह प्रभावशाली औषधि है, और इन दैहिक के कुरिन्थ वासियों के लिए यह एक प्रभावशाली औषधि है। पौलुस लिखता है कि वह उनके साथ सदेह या देह रूप में तो नहीं उपस्थित है, परंतु आत्मा में वह उनके साथ है। वह अपना मत प्रकट कर रहा है, और उसकी प्रार्थना है कि वह पुरुष शैतान को सौंप दिया जाए। हम पहला कुरिन्थियों के पत्र 5 अध्याय के 6 पद में पढ़ते हैं, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को खमीर कर देता है? मेरे मित्रों, आप जानते हैं कि कुरिन्थ की कलिसिया में क्या हो रहा था। कलिसिया में उपस्थित पाप के प्रति आंखें बंद करके वे अपने कामों के विषय घमंड से चर्चा करते थे। अति संभव है कि वे अपने द्वारा भेजे गए प्रचारकों के बारे में, धर्मशास्त्र के संबंध में उचित आचरण के बारे में और प्रभु के लिए आत्माओं को जीतने के बारे में घमंड करते थे। यह कैसा आडंबर था। ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं कि मसीही सेवा में व्यस्त रहने से असंख्य पापों पर पर्दा डाला जा सकता है। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि उनका घमंड करना उचित नहीं। क्या वे नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है। खमीर सुसमाचार का प्रतीक नहीं है, वह बुराई का सिद्धांत है और यहाँ वह निश्चय ही बुराई को दर्शाता है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 5:7 में लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह में जो मसीह है बलिदान हुआ है। मेरे मित्रों, रोटी में खमीर का क्या काम होता है। आप आटे में खमीर मिलाकर उसे कुछ समय गर्म स्थान में रख देते हैं। जब आटा फूल जाता है तब आप रोटी सेंकना आरंभ करते हैं। क्यों? क्योंकि अब अधिक खमीर की आवश्यकता नहीं है। यदि आप रोटी नहीं पकाएंगे तो खमीर बढ़ता ही जाएगा और अंत में पूरा आटा खराब हो जाएगा। ठीक ऐसा ही कलीसिया में उपस्थित बुराई के साथ होता है। यदि उसे समय पर सुधारा ना जाए तो इसका परिणाम यह होता है कि कलीसिया का प्रभाव अंततः समाप्त हो जाता है। मेरे मित्रों, थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है, अतः उसका निवारण अति आवश्यक है। थोड़ी सी बुराई बड़ी बड़ी चीजों को भी नष्ट कर सकती है, क्यों ना हम इससे पहले ही निकाल दें। मित्रों, पुराने नियम में फसह के पर्व के तुरंत बाद अखमीरी रोटी का पर्व आता था। पौलुस कहता है कि सच्चा फसह का मेमना मसीह यीशु हमारे लिए बलि किया गया और उसके तुरंत बाद अखमीरी जीवन उत्पन्न होना चाहिए, अर्थात शुद्ध जीवन आरंभ होना चाहिए। कुरुंत की कलीसिया खमीर को बढ़ने दे रही थी। कलीसिया में दुराचार के साथ निर्वाह कर रही थी। वे मसीह की मृत्यु और उसके क्रूसीकरण के बारे में प्रचार तो करते थे, परंतु वे कलीसिया में खमीर को स्वीकार करते थे। कहने का तात्पर्य है कि बुराइयों को स्वीकार करना। पहला कुरिन्थियों के पत्र 5:8 में लिखा है, सो आओ हम उस उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। मित्रों, ध्यान दीजिए, पौलुस मनुष्य के उद्धार की नहीं, उद्धार के बाद विश्वासी के जीवन की चर्चा करता है। निष्ठा से उद्धार नहीं है। जी हाँ, यहाँ निश्चित है कि आप यदि परमेश्वर की संतान हैं तो निष्ठावान भी होंगे। आज संसार को विश्वासियों में निष्ठा और सत्य की उपस्थिति देखना आवश्यक है। पौलुस कहता है, कुरिन्थ की कलीसिया में निष्ठा एवं सत्य व्याप्त हो। वहाँ की कलीसिया वास्तव में निष्ठावान थी, परंतु उनके मध्य घोर अनैतिकता थी। वे सोचते थे कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वे मन को समझा रहे थे कि सब यथोचित या सही चल रहा है। वे सत्य कहने और जीने का स्वांग रच रहे थे, जो वे वास्तव में थे नहीं। हम पहला कुरिन्थियों के पत्री 5:9-11 में पढ़ते हैं, मैंने अपने पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियंकड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। मेरे मित्रों, पौलुस उन्हें पहले पत्र में इन पापों के बारे में दोष दे चुका था। कुरिन्थ नगर अनैतिकता का केंद्र था। वहां प्रेम की देवी वीनस के मंदिर में 1000 पुजारिणी थी जो वेश्याएं थी। वह संपूर्ण नगर धर्म के नाम में व्यभिचार का अड्डा था। अपनी कलीसिया में उन्होंने इस अनैतिक पुरुष को अपनी सहभागिता में ले लिया और भोजन की भी संगति प्रदान की, यह जानते हुए भी कि वह पाप में लिप्त है। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे अपना अंग या अपना साथ बना लिया। मेरे प्रियो, कुरिन्थ की कलीसिया की मानसिकता वास्तव में यह थी कि वे सांसारिकता में निर्वाह कर सकते हैं। जैसा कि आज बहुत लोग पाप में जीवन जीते हैं और बनावटी आत्मिक जीवन को दर्शाते हैं, क्या आज की कलीसिया भी यही सोचती है कि वह संसार की अनैतिकता के साथ निर्वाह करके बच जाएगी। मेरे मित्रों, आज कलीसिया का यह सामर्थ समाप्त हो गया है। मैं एक आम बात कह रहा हूँ, परमेश्वर की स्तुति हो कि कुछ अति उत्तम कलीसियाएं आज भी हैं जो पृथ्वी पर ज्योति हैं। ये बाइबल आधारित कलीसियाएं हैं जो परमेश्वर के वचन पर अटल रहती हैं। मैंने एक युवा प्रचारक के बारे में सुना है कि उसकी कलीसिया में सांसारिक संगीत का कट्टर विरोध किया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी कलीसिया में सैकड़ों सदस्य कलीसिया त्याग कर चले गए। मैं ऐसे प्रचारक के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसमें ऐसी साहसिक क्षमता हो। आज लोगों को प्रसन्न करने के लिए कलीसिया में गीते चुने जाते हैं और आज अधिकांश विश्वासी आंखें बंद करके सांसारिकता को कलीसिया में आने दे रहे हैं। मेरे मित्रों, कलीसिया का सामर्थ समाप्त हो गया है। एक अशुद्ध कलीसिया लकवे की मारी हुई कलीसिया है और एक शुद्ध कलीसिया सामर्थी कलीसिया है। मनुष्यों के संबंध में भी यही बात सत्य है। मेरे मित्रों, पौलुस कहता है कि व्यभिचार ही मुख्य बात नहीं, वह लालच पर भी ध्यान आकर्षित करता है। कलीसिया के सेवक के हाथ पैसों में ही होते हैं। जी हाँ, कलीसिया का एक सदस्य जिसका हाथ अधिक धन में गंदा हो तो पौलुस मूर्ति पूजकों अर्थात अन्य धर्मों में सहभागिता के विषय में भी बातें कहता है। मैंने एक कलीसियाई अगुए के बारे में सुना है जो किसी पूजा पद्धति में सहभागी था। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि कलीसिया में लेश मात्र भी बुराई हो तो उसका तुरंत निवारण आवश्यक है, अन्यथा वह एक दिन कलीसिया को भ्रष्ट कर देगी, वरन नष्ट भी कर देगी। थोड़ा सा खमीर संपूर्ण आटे को खमीर कर देता है। इसलिए मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको भी सचेत होने की आवश्यकता है। पहला कुरिन्थियों के पत्री 5 अध्याय उसके 12 और 13 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम, क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। मेरे मित्रों, पौलुस कहता है कि कलीसिया से बाहर उसे किसी से कुछ कहने का अधिकार नहीं है, उसे कलीसिया के सदस्यों का ही न्याय करना है। बाहर वालों का न्याय तो परमेश्वर करेगा। कलीसिया का काम है कि वह अपने मध्य उपस्थित बुराई को दूर करे। कहने का मतलब है कि बुराई को देखकर अपनी आंखों को बंद न रखे। अब हम जानना चाहेंगे कि कुरिन्थ में अंततः क्या हुआ। इसके लिए आइए हम दूसरे कुरिन्थियों के पत्री 2 अध्याय उसके 4 से 8 पद को पढ़ें। दूसरे कुरिन्थियों के पत्री 2 अध्याय 4 से 8 पद लिखा है, बड़े क्लेश और मन के कष्ट में से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था। इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं, वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई न करूं। कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है। इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। मेरे प्रियो, यह अनैतिक पुरुष पौलुस का पत्र आने के बाद मन फिराकर सुधर गया। आज हमें कलीसिया में समझौता नहीं, साहस की आवश्यकता है कि ऐसी बातों पर उंगली उठाकर कह पाए कि यह पाप है। मेरे विचार में ऐसा कहने पर पाप में पड़ा विश्वासी मन फिराएगा और कुरिन्थ की कलीसिया के समान या एक सदस्य जो पाप में था प्रभु में आ गया और दाऊद की नाई अपने पाप का अंगीकार करके अपने मार्ग सुधारेगा। जी हाँ, कुरिन्थ की कलीसिया ने इसे अति उत्तम रीति से निभाया। क्यों? क्योंकि पौलुस में यह लिखने का साहस था। कुरिन्थ की कलीसिया को लिखे दूसरे पत्र में पौलुस इसके कारण स्पष्ट करता है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 7 अध्याय उसके 12 पद में, फिर मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था वह न तो उसके कारण जिसने अन्याय किया और न उसके कारण जिस पर अन्याय किया गया, परंतु इसलिए कि तुम्हारा उत्साह जो हमारे लिए है वह परमेश्वर के सामने तुम पर प्रकट हो जाए। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि ऐसा पत्र लिखने में उसका एकमात्र कारण था कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का कल्याण हो। आज हम एक लाचार आडंबरपूर्ण स्वभाव कलीसिया में देखते हैं। मेरे प्रियो, हम इस बात को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, हम समस्या खड़ी करना नहीं चाहते हैं, हम इस पर पर्दा डालें तो अच्छा होगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर ऐसा स्वभाव रखने वाली कलीसिया या व्यक्ति को आशीष नहीं देगा, कदापि नहीं। यदि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी तो वह झूठा सिद्ध होगा। ऐसी स्थिति में उदासीनता का वह दंड अवश्य देगा। मेरे प्रियो, इस अध्याय में हमारे लिए एक अति उत्तम शिक्षा है जो पूर्णतः व्यवहारात्मक है। जी हाँ, आज मेरे लिए और आपके लिए भी इसे व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, जब आज हम अपने नजरों को कलीसियाओं की ओर उठा करके देखते हैं तो बहुत सारी कलीसियाएं आज कुरुंत की कलीसिया के समान बनी है। पहले वाली कलीसिया, बहुत सारे पाप कलीसियाओं में है, बहुत सारी बुराइयां कलीसियाओं में है, लेकिन आज सब चुपचाप बैठे हुए हैं। वे अपनी आंखों को और अपनी जुबानों को लगाम लगाए हुए हैं। मेरे प्रियो, आज समय आ गया है कि हम सत्यता को प्रकट करें, वचन की गहराई को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारी कलीसिया आशीषित हो। क्या आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया आशीषित हो? यदि हाँ, तो आज ही आप भी अपने जीवन में एक सही निर्णय लें। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने कुरुंत की कलीसिया के उस पाप को जाना है। इतना ही नहीं, अपनी कलीसिया के पाप को भी जाना है। अपने लोगों को आपने देखा है, क्यों ना हम इस गलती को, इस पाप को अपने जीवन से निकाल दें, कलीसिया से निकाल दें, ताकि हमारे अंदर वो महान आशीष दिखने पाए। प्रभु, आज के इस वचन के द्वारा आप सबको, हम सबको बहुताय से आशीष दे और हम सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जो क्रूस पे जाती है वो राह हमारी है, जो क्रूस पे जाती है वो राह हमारी है, वो क्रूस निशाना है, वो क्रूस निशाना है, मंजिल वो हमारी है, जो क्रूस पे जाती है वो राह हमारी है। लंबा है सफर अपना, बढ़ते ही जाना है, है ताज रखा फिर उस ताज को पाना है, उस ताज को पाना है, जो क्रूस पे जाती है वो राह हमारी है।
जो क्रूस पे जाती है वो